हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 406। उन लोगों ने जैसे ही मनस्वी पर सामने से अटैक करना शुरू किया, वैसे ही तुरंत उसका बॉडीगार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, पूरी तरह से उसे कवर करके। उसकी पीठ पर काफी सारे पत्थर लगे, लेकिन उसे इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो काफी लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर इंसान था, और उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो भी काफी मोटे कपड़े से बनी हुई थी। लेकिन फिर भी ज्यादा देर तक वो भी इस तरह शील्ड बनकर खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए उसने मनस्वी से कहा, मैम अब आपने देख लिया ना, इसीलिए ही मैं आपको यहाँ पर आने से मना कर रहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, और अब देख लिया ना क्या हुआ, चलिए जल्दी अंदर जाइए यहाँ से। इतना बोलते हुए बॉडीगार्ड ने उसे वहां से ले जाने की कोशिश की। अनय भी वहां पर आना चाहता था, लेकिन मैनेजर और बाकी स्टाफ ने बाहर की सिचुएशन खराब होते देखकर उसे वहीं पर ही रोक दिया। अरे नहीं, मुझे जाने दो, देखो वो मनस्वी मैम वहां पर अकेली है। इतना बोलते हुए अनय अपनी जगह से थोड़ा आगे आया। नो सर, आप यहीं पर रुकिए, और मैम अकेली नहीं है, अंकित है वहां पर उनके साथ, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैनेजर ने उसे वहां जाने से मना करते हुए कहा, क्योंकि वहां बाहर के हालात बिगड़ रहे थे, मनस्वी पहले से ही वहां पर थी, और ऐसे में वो नहीं चाहता था कि उनके होटल का कोई और भी बाहर जाकर वहां पर किसी सिचुएशन में फंस जाए। अनय को मनस्वी की फिक्र हो रही थी और वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन वो सामने से उसके लिए फिक्र दिखा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। इस बारे में वहां होटल स्टाफ, मैनेजर और किसी को भी कुछ नहीं पता था, इसलिए वो उसके वहां पर भी आने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ उसके बॉडीगार्ड अंकित ने उसे ये सब समझाया, तो मनस्वी ने उसकी बात सुनकर धीरे से हाँ में अपना सर हिलाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो लोग उसकी बात नहीं सुनने वाले थे। वो सब काफी ज्यादा भड़के हुए थे और सिचुएशन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसलिए बिना कोई बहस किए वहां से जाने के लिए वो उस पत्थर से हड़बड़ाहट में उतरी तो उसका पैर मुड़ गया और फिर वो सीधी खड़ी नहीं हो पाई। उसने मीडियम हील के टिपटोज पहने हुए थे, इसलिए अचानक से पैर मुड़ने की वजह से उसे काफी तेज दर्द हुआ और उसकी चीख निकल गई। उसे इस तरह से लड़खड़ाते हुए देखकर उसके बॉडीगार्ड अंकित ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे संभालकर सहारा देते हुए खड़े करने की कोशिश की, लेकिन मनस्वी को खड़े होने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। चलकर गेट से अंदर तक जाना तो बहुत दूर की बात थी, इसलिए अंकित ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि वो समझ गया था कि मनस्वी के पैर में मोच आ गई है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। अंकित मनस्वी को लेकर होटल के अंदर की तरफ बढ़ा। इसके बाद वहां के सिक्योरिटी गार्ड आगे आ गए और उन लोगों को वहां से हटने लगे। उन लोगों ने जब तक पुलिस को भी फोन कर दिया था, उन सारे लोगों ने मिलकर वहां की सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, और जब तक बॉडीगार्ड मनस्वी को लेकर वहां होटल के अंदर आ गया। वहां गेट के पास ही अनय भी खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही मनस्वी को अंकित की गोद में देखा, वो दौड़ते हुए उसकी तरफ आया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? सबके सामने ही अनय ने उससे इस तरह से पूछा, लेकिन मनस्वी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला और उसने बस धीरे से हाँ में अपना सर हिलाया। वो अभी भी अपने बॉडीगार्ड की गोद में ही थी, लेकिन अनय को सामने देखकर अब उसे थोड़ा सा अजीब लगा, तो उसने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अंकित, तुम अब मुझे यहाँ पर उतार दो, यहाँ पर मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं अपने केबिन तक चली जाऊंगी। नो वे मैम, मेरा काम आपको प्रोटेक्ट करना है, और मुझे अच्छी तरह से दिख रहा है कि आप कितनी ठीक हैं और कितनी नहीं। आपके पैर में मोच आई है हड़बड़ाहट की वजह से, मैं आपको केबिन तक ले जाऊंगा और वहीं पर ही आकर डॉक्टर भी आपको चेक कर लेंगे। इतना बोलते हुए वो उसे लेकर वहां पर आगे बढ़ गया, लेकिन अनय को थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि मनस्वी के कहने पर भी उसके बॉडीगार्ड ने उसकी बात नहीं सुनी। मनस्वी को इस तरह बॉडीगार्ड की बाहों में देखकर अनय को बहुत ही बुरा लग रहा था, और उसने जल्दी से उन दोनों के पीछे आते हुए कहा, उतार दो ना नीचे, जब वो कह रही है कि मैनेज कर लेगी तो फिर तुम्हें क्या शौक लगाए उसे इस तरह गोद में लेकर घूमने का। अनय की इस बात पर बॉडीगार्ड ने एक नज़र उसकी तरफ देखी। वो ये तो जानता था कि मनस्वी के साथ उसका कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, लेकिन वो दोनों शादीशुदा और हस्बैंड वाइफ हैं, इस बारे में बॉडीगार्ड को भी कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वो उनके साथ उनके घर पर नहीं रहता था। वो सिर्फ ऑफिशियल मीटिंग और बाहर कहीं आने जाने के लिए और ऑफिस में ही मनस्वी के साथ होता था। सॉरी सर, बट मैम के पैर में मोच आई है और मुझे कोई शौक नहीं है, यो बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्लीज़ आप हमारे रास्ते से हटिए। बॉडीगार्ड की ऐसी बात सुनकर अनय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर उसने नाराजगी से मनस्वी की तरफ देखा, तो मनस्वी ने अपनी नज़रें फेर ली, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो सच में अभी चल नहीं सकती थी, उसे पैर में काफी तेज दर्द महसूस हो रहा था, और तब तक उसका बॉडीगार्ड अनय को वहीं पर ही छोड़कर वहां से मनस्वी को लेकर उसके केबिन की तरफ चला गया।
अनय थोड़ी देर तक वहां पर अकेला खड़ा रहा। वो इस बारे में ही सोचता रहा कि उसे इस तरह से मनस्वी को अंकित की बाहों में देखकर इतना बुरा क्यों लगा, जबकि वो तो उससे प्यार भी नहीं करता और वो दोनों सिर्फ नाम के ही हस्बैंड वाइफ हैं। और वैसे भी अंकित सिर्फ अपना काम कर रहा था, जैसा कि उसने कहा, और उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ सोचते हुए अनय ने अपने दिमाग से ये ख्याल झटकते हुए कहा, क्या सोच रहा हूँ मैं ये सब, पागल हो गया हूँ क्या मैं? अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सामने, वैसे भी मैं इस बारे में बात करने के लिए ही उसके पास आ रहा था और इस बीच इतना कुछ हो गया। खैर चलो, मैं अभी जाकर देखता हूँ, उसके पैर में ज्यादा चोट तो नहीं आई। हाँ, इतना तो देखना ही चाहिए मुझे, अनय ने अपने आप को समझाया और तुरंत ही वो भी मनस्वी के केबिन की तरफ ही बढ़ गया। हॉस्पिटल में आदित्य सुनैना के साथ ही था, क्योंकि उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया था कि उसे ज्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस बेहोश हो गई थी ज्यादा स्ट्रेस और सरदर्द की वजह से। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और आदित्य को समझाकर बस अभी अभी वहां से गए थे। आदित्य उसका हाथ थामकर उसके साथ ही बेड पर बैठा हुआ था और उसके सामने बैठा हुआ उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था और उसके होश में आने का भी इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद सुनैना को होश आया और उसने अपनी आंखें धीरे से खोली, लेकिन आसपास तेज रोशनी की वजह से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि हॉस्पिटल में सारी दीवारें, पर्दे, सब कुछ व्हाइट और लाइट कलर के थे, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा रोशनी लगी। उसे इस तरह फिर से आंखें बंद करते देख आदित्य थोड़ा सा पैनिक हो गया और उसका हाथ पकड़े हुए ही उठकर खड़े होते हुए बोला, क्या क्या हुआ सोना, तुम ठीक हो ना, या अभी भी सिर में दर्द है क्या? तुमने बताया क्यों नहीं था मुझे?
ये सारी बातें उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली और सुनैना ने दोबारा से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक हूं मैं, और सिर में दर्द? हाँ, अभी तो सिरदर्द काफी कम है पहले से। इतना बोलते हुए वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी और फिर उसने आसपास देखा तो बोली, यहाँ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं हम? इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मुझे, फिर क्यों बार बार तुम मुझे यहाँ हॉस्पिटल ही लेकर आ जाते हो? उसकी ये बात सुनकर और उसे इस तरह से मुंह बनाते हुए देखकर आदित्य थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, आखिर चाहती क्या हो तुम? इस तरह से अचानक ही बेहोश हो गई? और आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सुनैना थोड़ा सोचते हुए बीच में बोल पड़ी, क्या मैं बेहोश हो गई थी? लेकिन कब? मुझे तो लास्ट बस इतना याद है कि हम डॉक्टर से मिलकर घर वापस जा रहे थे कार में, और फिर मुझे बहुत तेज सिरदर्द हुआ, फिर पूरा ब्लैकआउट हो गया और मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद से, सुनैना सब कुछ सोचते हुए बोली। तो आदित्य ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, कैसे याद होगा सब कुछ, बेहोश हो गई थी तुम, उसके बाद इसीलिए तो हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। वैसे ऐसे मत किया करो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी ऐसी हालत में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और ऐसा लगता है तुमसे ज़्यादा तो तबीयत मेरी ख़राब हो जाएगी और फिर मुझे एडमिट होना पड़ेगा यहाँ। इतना बोलते हुए आदित्य आगे आया और उसने सुनैना के कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए उसकी गर्दन में ही अपना चेहरा छुपा लिया। ये सब कुछ बोलते हुए वो उसके लिए बहुत परेशान लग रहा था, वो इस बारे में सोच रही थी, काफी इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे सुनैना उसे भी महसूस कर सकती थी और उसकी आवाज़ में सुनाई दे रही थी उसके लिए फिक्र भी। सुनैना ने हैरानी से बिना पलकें चपकाए उसकी बातें सुनती रहीं और कुछ भी नहीं बोली, लेकिन आदित्य ने उसे इस तरह से उसकी गर्दन पर अपना सिर रखे हुए बोलना जारी रखा, प्लीज़ रिमेंबर मी सोना, तुम इस तरह से ये कैसे भूल सकती हो मुझे? क्या मैं बिल्कुल भी मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए? उसकी ऐसी बात सुनकर सुनैना भी काफ़ी इमोशनल हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे आदित्य की सारी बातें एकदम सच लगती हैं, खासकर जब वो बोलता है कि वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो उससे बहुत प्यार करता है। यही सच्चाई अभी भी उसे आदित्य की बातों में नज़र आ रही थी, इसलिए उसने आदित्य के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज़ चुप हो जाओ, और लगता नहीं सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ और कुछ एहसास हम याद किए बिना भूलने के बाद भी महसूस कर सकते हैं। सुनैना ने ये बात बोली तो आदित्य ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ कि सुनैना ने ही ये सब कुछ बोला है, और उसके इस तरह से देखने पर सुनैना भी उसे नज़रें चुराने लगी। तो फिर आदित्य ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन ये सुनकर उसे कहीं ना कहीं मन में तसल्ली ज़रूर मिली थी कि सुनैना उसके प्यार को महसूस कर सकती है याददाश्त जाने के बाद भी। सुनैना को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो दोनों कुछ ही घंटों के बाद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए, और इस बार कार में पूरे रास्ते आदित्य सुनैना की तरफ ही घूर घूर कर देख रहा था, उस पर नज़र रखते हुए, और इस बात से सुनैना थोड़ी सी इरिटेट हो गई। क्रमशः